नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः समाधान में आप सभी का। चर्चा पुनः विद्यार्थियों पर। पिछली बार हम मूल्यों की चर्चा कर रहे थे कि मूल्य ही वास्तव में विद्यार्थी को मूल्यवान बनाते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं मूल्यों की चर्चा बहुत कम हो गई है। जो चीज हमें मूल्यवान बनाने वाली है, जो हमें सफलता की ओर ले चलने वाली है, जिस पे देश का भविष्य केंद्रित है, आधारित है, उस पर तो चर्चा अवश्य होनी चाहिए। ये चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम में इस चीज को शामिल किया जाए, लेकिन जब तक ये बात एजुकेशन सिस्टम में नहीं आ रही है, तब तक व्यक्तिगत रूप से तो जरूर हम मूल्यों पर ध्यान दें, और पेरेंट्स इस बात पर भी अवश्य ध्यान दें कि अपने बच्चों के अंदर मूल्यों का बीजारोपण बचपन से शुरू करें। ये चर्चा हमारी चल रही थी, बहुत सुंदर चर्चा है, क्योंकि इस पर ही हम विद्यार्थियों का भी भविष्य और देश का भविष्य भी आधारित है, और इसी बात को करके किसी भी देश का भविष्य निश्चित रूप से सुनहरा हो सकता है। तो आज पुनः हम इस चर्चा को भ्राता जी के साथ बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में विराजमान है आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
भ्राता जी। जैसे हम चर्चा कर रहे थे पिछली बार भी मूल्यों की, कि मूल्यों की कहीं आजकल चर्चा नहीं हो रही है जितनी आवश्यकता इसकी आज के दौर में हो गई है, उस कंपेरिजन में उसकी चर्चाएं भी नहीं है, और साथ ही लोग इसके प्रति अवेयर भी नहीं है। तो क्या लगता है कि कैसे विद्यार्थी वर्ग इन चीजों की ओर ध्यान दे, या किन किन मूल्यों की ओर ध्यान दे, ताकि उसका जीवन सफलता की ओर आगे बढ़े?
हाँ, बिल्कुल। विद्यालयों में भी ऐसा वातावरण सभी को क्रिएट करना ही चाहिए, और घरों में भी।
जी,
घर का वातावरण भी ऐसा हो जो खुशहाली से भरपूर हो, हल्कापन भी हो वहां।
जी,
वातावरण में टेंशन ना हो, एक प्रेशर न हो, और इसके लिए जिम्मेदार हैं बड़े लोग।
जी,
चाहे माता पिता या उनके माता पिता या और बड़े लोग, कि वो किसी भी छोटी छोटी बात को तूल देकर वातावरण को हैवी न कर दे घर में। तो इससे बच्चों में जो सीखने की इच्छा है, सीखने की जो उनकी बुद्धि की कैपेबिलिटी है, वो कायम रहेगी। क्योंकि अगर एक प्रेशर रहता है ना सदा ही, तो उनकी बुद्धि जैसे दबी दबी कुछ और सीखने के लिए अब तैयार नहीं, उसमें विचार ही नहीं आएंगे कुछ भी।
जी जी।
तो शुरुआत करें, चलो विद्यालयों में न हो रही हो, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा है तो खराब बात कि सब कुछ कॉमर्शियल हो गया है। कोई भी अगर स्कूल कॉलेज खोल रहा है तो पहला उसका लक्ष्य है कि कमाई कितनी होगी।
जी।
तो लेकिन बच्चों को एजुकेट करना है, उन्हें विद्वान बनाना है, उन्हें महान पुरुष बनाना है, उन्हें चरित्रवान बनाना है, जैसे उनको गढ़ कर निकाल देना है, गढ़ लेना है। क्योंकि किसी भी देश की असली संपत्ति उसके देशवासियों का चरित्र ही है। जैसे हम भारत माता के नारे लगाते हैं, भारत की महानताओं के गीत गाते हैं, बहुत सारे गीत बने हैं, लेकिन वो गीत भारत की धरती के थोड़ा ही हैं, भारतवासियों
के हैं।
तो जितने चरित्रवान, निर्भीक, बुद्धिमान, आज्ञाकारी, पवित्र दृष्टिकोण रखने वाले, सरल चित, हर समस्या को सहन करने वाले, इन मूल्यों को जितना बच्चे लेकर चलेंगे, तो ये भविष्य की नींव बनेंगे, और इन पे आधारित उनकी जीवन की इमारत सचमुच इतनी सुदृढ़ होगी। मेरा ये भी लक्ष्य होता है कहने का कि जब वो एजुकेशन पूरी करके एक कर्म क्षेत्र में पहुंचेंगे, किसी भी जॉब पर जाएंगे, वो अच्छे इंजीनियर बनेंगे या मेडिकल फील्ड में जाएंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज उनकी जिम्मेदारी होगी, वो लोगों के काम करेंगे, तो उस समय ये जो उनकी वैल्यूज हैं, ये चाहे मैं कहूं उनकी प्रसिद्धि का आधार बनेंगी, उनकी प्रमोशन का आधार बनेंगी, उन इसी कारण से वो सम्मान अर्जित करेंगे।
मतलब वो केवल विद्यार्जन ना करें, लेकिन एक अच्छे इंसान बने। तो विद्यार्थी काल केवल पढ़ने लिखने के लिए ही नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान बने, और अच्छा इंसान बनाएंगे ये मूल्य, जिसकी चर्चा पहले भी भ्राता जी हम लोग कर रहे हैं, कि केवल क्वालिफिकेशन नहीं लेकिन क्वालिटीज भी डेवलप हों, केवल शिक्षित ही ना हो लेकिन वो दीक्षित भी हों, तो इन मूल्यों की कहीं कहीं आवश्यकता है। लेकिन बात भ्राता जी कई बार आ जाती है ये, कि कहते हैं हिंदी में कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ लेगा, तो यदि एक मैं ही सुधर जाता हूं या एक मैं ही अपने अंदर मूल्यों को ले आता हूं लेकिन बाकी सब ऐसे हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं मूल्यों को धारण करने में विद्यार्थियों को भी कहीं पीछे रख देती है और बड़ों को भी पीछे रख देती है। तो इस धारणा को कैसे दूर की जाए?
देखो, जहां तक अकेले चलने की बात है
जी,
आसमान में सूरज भी तो अकेला है,
बिल्कुल
सारे संसार के तम को हर लेता है
जी।
रात्रि में पूर्णिमा का चंद्रमा भी तो अकेला होता है, क्या सबके मन को आकर्षित करता है
जी।
महात्मा गांधी भी तो अकेले थे, अकेला ही व्यक्ति तो संगठन तैयार करता है
जी।
क्या स्वामी विवेकानंद ने सोचा था वो अकेला है वो क्या करेगा? देश की स्थिति बहुत दयनीय थी, मैं तो समझता हूँ जानता हूँ ना, एजुकेशन थी, गरीबी बहुत ज्यादा हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो अंग्रेजों का था वो एक आताई जैसा था, टॉर्चर कर रहे थे, किसी को एजुकेट नहीं करने देते थे, किसी को आगे नहीं बढ़ने देते थे, उसने ये दुर्दशा सबकी देखी थी। तो अकेला ही व्यक्ति चला ना, अकेला व्यक्ति चलता है तो उसके पीछे चलने वाले बहुत
कारवां बनता चला जाता है, मतलब हम शुरुआत तो
शुरुआत करें
अपनी तरफ।
इसलिए अगर किसी क्लास में 50 में से 5 विद्यार्थी भी मूल्यवान बनने का, चरित्रवान बनने का संकल्प कर लें, भले ही लोग उनकी हंसी मजाक उड़ाएंगे कि हाँ चले हैं ईमानदार बनने, भूखे मरेंगे, हाँ उठाई है सत्य की बात, आज सत्य कहाँ चलता है, झूठ का राज्य है, झूठे जो हैं वही आगे बढ़ रहे हैं, तुम तो पीछे रह जाओगे, कमेंट्स होंगे
जी,
अच्छी बातों पे कमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर मनुष्य पाप करने से नहीं डर रहा है तो वो अच्छे कार्य करने से, अच्छे गुण जीवन में धारण करने से भी क्यों डरे? तो हम इस बात को हटा दें कि अकेला क्या करेगा, अकेला ही संसार को दिशा दे सकता है।
बिल्कुल, यदि कुछ लोग ये ठान लें, विद्यार्थी वर्ग ही मान लीजिए ये ठान ले कि नहीं, हमें अच्छाइयों को जीवन में लाना ही है, चाहे सामाजिक परिवेश परिस्थितियां कैसी भी हों, तो निश्चित रूप से स्थितियां बदलेंगी, लेकिन शुरुआत करने वालों की आवश्यकता है। और हम ये भी जानते ही हैं कि जैसे आपने कहा कि कोई भी नए कार्य की शुरुआत होती है तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को आगे आना पड़ता है, और जब वो कार्य सफल हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो हम मूल्यों को इस रूप में शुरू कर सकते हैं। प्रति जी, ये भी देखा जाता है ना, जहां तक एक नकारात्मकता की बात आती है वो ये कि जब चारों तरफ, जैसे हमने कहा कि एक नई भ्रष्टाचार का एक माहौल है जो आजकल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है, और स्कूलों में अब बच्चों को ये सुना जाता है कि हम पढ़ाया करते थे कि भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन अब जब ये बात कही जाती है तो बहुत दबी जुबान में कही जाती है, क्योंकि बात जैसे आपने कही कि कौन ईमानदार है और ईमानदारी से क्या तुम प्राप्त कर लोगे, आजकल तो शॉर्टकट का मार्ग है। तो ये शॉर्टकट के माध्यम से चाहे एजुकेशन में हो चाहे अन्य क्षेत्रों में हो वो सफलता प्राप्त करना चाहता, तो ये कहां तक सही है और ये कहां तक आनंद दे पाता है व्यक्ति को?
देखिए, यही है कि संसार में पिछले 20-30 सालों में एक चीज मनुष्य के अंदर बहुत बढ़ गई है और वो है लोभ
जी।
और इसका कारण विज्ञान की प्रगति से भी जुड़ा है कि विज्ञान ने इतनी चीजें बाजार में ला दी हैं कि हर व्यक्ति को पैसे की अत्यधिक आवश्यकता है
जी।
अब पैसा वो कैसे कमाए ये वो सोचता नहीं, मतलब मनी इज एवरीथिंग
जी,
ऑन एनी कॉस्ट ही हैज टू मेक मनी। तो इसके लिए वो सभी मूल्यों को ताक पे रख देता है, वो देखता है फलाना व्यक्ति भी धनवान बना तो समाज में उसकी वैल्यू हो गई, है वो भ्रष्ट है वो पापी, उसमें दुर्गुणों के बोरियां भरी हुई हैं, लेकिन धनवान है इसलिए प्रेसिडेंट बना दिया गया, फलानी ऑर्गेनाइजेशन का उसको अध्यक्ष बना दिया गया, उसको सेक्रेटरी बना दिया गया, अरे भाई पैसे की वैल्यू है। तो ये जो एक समाज ने एक रुख अख्तियार किया है कि जिसके पास धन है वही भी आईपी है, जो बुद्धिमान है, जो बहुत शिक्षित हैं, बेचारे गरीब हैं, उनकी कहीं पूछ नहीं है, इन चीजों ने भी कहीं ना कहीं मूल्यों के प्रति मनुष्य के आकर्षण को समाप्त किया है। लेकिन अगर हम करप्शन की और धन की बढ़ोतरी की देखें तो ये देखने में आ रहा है करप्ट लोग तो थोड़े ही होते हैं, मान लो नेताओं की चर्चा हुई तो दो चार नेताओं की बात हुई, बदनाम हो गए सारे के सारे
जी।
और एक लहर ऐसी फैल गई कि यही सब कुछ चलता है
जी।
कौन बिल्ली को घंटी कौन बांधे बिल्ली के गले में, तो सब उसमें रम गए। लेकिन देखिए, वो लोग जेल में गए, समाज में उनकी बदनामी बहुत हो गई, और फिर एक इस सृष्टि का एक सुंदर सा सिद्धांत है कि गलत तरीकों से कमाया गया धन कभी भी सुखदायी नहीं होता। मेरे को जब मैं ये बात लोगों को बताता हूँ, प्रैक्टिकल बात सुनाऊं, तो कोई माता पिता मेरे पास आए और कहा हमारे बच्चे बिल्कुल मानते नहीं, बिगड़ते जा रहे हैं। तो मैंने उनसे बहुत सारी बात की, फिर मैंने उनको ये सिद्धांत बताया कि देखो बुरा न मानना, पर आप विचार जरूर करना इस बात का कि बुरे धन से अगर धन कमाया जाता है तो उस धन से जिन बच्चों की पालना होगी वो न चरित्रवान होंगे न आपको सुख देंगे। तो ये बात सुन के दोनों ही शांत हो गए। मैंने कहा शांत क्यों हो गए कि बस यही बात हुई है, हमारा धन पवित्र धन नहीं है। हमने जिस ढंग से उसे कमाया है उसका परिणाम ये बच्चों की जो स्थिति है अब वो हमें टेंशन दे रहे हैं, हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है, वो अपनी चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उनको हमारी कोई केयर नहीं है कि हम भी कुछ परेशान हो रहे हैं, हमें तो उन्हें कुछ सुधरना चाहिए। तो इस बात, इस सत्य सिद्धांत को भी हमारे विद्यार्थियों को अपने अंतर मन में अभी से समा लेना चाहिए कि ईमानदारी से जो धन कमाया जाएगा वो जीवन को बहुत सुख देगा, उससे हमारी प्रोग्रेस बहुत होगी, उससे जीवन में संतुष्टि बहुत होगी और हमारा धन शारीरिक बीमारियों पे खर्च नहीं होगा।
बहुत ही सूक्ष्म बात कही है भ्राता जी आपने, न केवल ये विद्यार्थियों के लिए है लेकिन सभी के लिए है कि यदि हम धन जिस प्रकार से कमा रहे हैं यदि उसका तरीका गलत है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर भी दिखाई देगा, हमारे परिवार पर भी दिखाई देगा, हमारे भविष्य पे दिखाई देगा और साथ ही गलत तरीके से ही वो धन बाहर भी चला जाएगा। ये एक बहुत सुंदर बात आपने कही प्रताप जी। विद्यार्थी वर्ग की बात है तो विद्यार्थी अपने जीवन में किस प्रकार सफल होने के लिए मूल्यों को अपनाए और कौन कौन से मूल्यों पर विशेष करके वो ध्यान दे।
बहुत अच्छी ये बात है जी। और विद्यार्थी जो अपने भविष्य को बहुत गोल्डन बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनका समाज में भी नाम हो जी। उनके माँ बाप भी उनके परफॉर्मेंस को देखकर अपने को गौरवान्वित अनुभव करें और देश भी कहीं ना कहीं उन पर गर्व करे जी। तो सफलता के मार्ग पर चलने के लिए जैसे हम पहले से सूक्ष्म चर्चा करते आ रहे हैं कि हमारी इनर पावर्स का बहुत अच्छा होना आवश्यक है, उससे जुड़ी हुई हैं कुछ वैल्यूज जैसे बहुत संतुष्ट रहकर जीवन जीना, बहुत सहनशील बनकर जीवन जीना जी। बहुत एकाग्रचित होकर जीवन जीना, संयमित रहकर जीवन जीना और किसी हद तक सत्यता को अपने जीवन में अपनाना, अपने बोल को विषैला न करना, अपनी वाणी को मधुर रखना, अपने संबंधों में तीन चीजें प्यार, सम्मान और सहयोग रखना जी। ऐसे ही निर्भय होना बहुत ज्यादा, अपने मनोबल को ऐसा दृढ़ रखना, अपने अंदर ऐसी दृढ़ता लाना ताकि कोई भी समस्या सामने आ जाए जिसे हमें फेस करना पड़े तो हम नर्वस न हो जाएं, हम सब कुछ भूल न जाएं। तो ऐसे ही जीवन को बहुत सरलता पूर्वक जीना, ईगो लेस होना, अपने क्रोध को बिल्कुल कम करते चलना, कहीं भी अपने अंदर ईर्ष्या द्वेष को स्थान ही न देना, घृणा भाव से सदा मुक्त रखना। बहुत सुंदर विचार,
आदर्श आपने एक रखा है भ्राता जी कि ऐसा हो विद्यार्थी और इन इन वैल्यूज को अपने जीवन में लाएं, लेकिन इसका सोर्स क्या हो। अब ये होता है जैसे हमारी चर्चा जहां पहुंचती है बार बार वो यही कि आसपास जब चारों तरफ का वातावरण ऐसा हो कि कहीं ये सोर्स दिखाई ना दे रहा हो, चाहे वो मीडिया की बात आप देख लें, न्यूज़पेपर या टेलीविजन जैसे ही हम ओपन करते हैं हिंसात्मक बातें, एक्सीडेंट की बातें, अन्य बातें तो सभी होती हैं दुनियावी, लेकिन ये जो मूल बातें हैं, मूल्यों की बातें हैं, शिक्षा की बातें हैं, वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो एक विद्यार्थी से हम कैसे अपेक्षा रखें कि इन सब चीजों को वो धारण करे और यदि करे तो कहां से
कैसे करे जी। यही बात है और यही सीखना और सिखाना परम आवश्यक है, क्योंकि जो भी उपदेश करने वाले, अच्छी बात सिखाने वाले, वो ये तो कह देंगे क्रोध न करो, क्रोध बहुत बुरा है, इससे विवेक शक्ति नष्ट होती है, गीता में ये कहा, फलाने ने कहा, लेकिन क्रोध करें कैसे ना। क्रोध तो आता है सिचुएशन से सामने आ जाती हैं कि मनुष्य को क्रोध आता है, ऐसे ही भय भी हो जाता है मनुष्य को। सत्यता का मार्ग पर भी चलना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है, वो देखता है सत्य का मार्ग तो कांटों से भरा हुआ है, जो झूठ का मार्ग है वो साफ है, उस पर हम दौड़ सकते हैं, सत्य के मार्ग पे तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। तो मेरे पास ऐसे कुछ बहुत अच्छे इसके अनुभव हैं जिसके आधार से हम अपने इन सद्गुणों का, इन वैल्यूज का जीवन में समावेश कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि ये गुण हमारे अंदर थे और अब भी हैं, चाहे उनकी इंटेंसिटी कम हो गई हो। ऐसा नहीं कि प्रेम आज मनुष्य के पास नहीं है, है, उसकी परसेंटेज कम हो गई है। ऐसा भी नहीं कि शांति उसके पास नहीं है, निर्भयता उसके पास नहीं है, सत्यता उसके पास नहीं है, सहयोग देने की भावना, सम्मान करने का संस्कार उसके पास, ये सब हैं, थोड़े रह गए हैं। लेकिन ये हमारे पास फुल परसेंटेज में थे, अभी वो नष्ट हुए हैं, कुछ को हमने दबा दिया है, समाज के परिवेश ने, लोगों को देखकर, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि भाई इसकी जरूरत नहीं, कौन ऐसा कर रहा है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो जैसे बीज होता है, उसको धूप न दो, पानी न दो, अच्छी मिट्टी में न लगाओ तो विकसित नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो ये जो सद्गुणों के बीज थे हमारे अंदर, क्योंकि हमने इनका विकास नहीं किया, इन पर कुछ चिंतन नहीं किया, इनके बारे में समाज में हमारे गुरुजनों ने, शिक्षकों ने किस तरह का प्रकाश मनुष्य बच्चों को नहीं दिया, तो ये भी जैसे लोप जैसे हो गए। लेकिन वो हैं, अब हमें उन्हें जगाना है तो जगाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक, उस वैल्यू पर चिंतन करना। जैसे मान लो क्लास ही चल रही है तो एक पीरियड दे दिया गया और आज्ञाकारिता पर जो टीचर आया वो बच्चों को अच्छी तरह उदाहरण दे देकर समझा रहा है, जैसा हम लोगों ने टच द लाइट में किया तो देखा कि बच्चे उसको समझ रहे हैं और वो रियलाइज कर रहे हैं हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बताते थे, हम अपने बड़ों की आज्ञा नहीं मानेंगे तो आगे चल के हमारी आज्ञा कौन मानेगा। बच्चों को अपील किया कि हम भी तो चाहते हैं हमारे छोटे हमारी बात माने, लेकिन हम ही अपने बड़ों की नहीं मान रहे तो हमारी कौन मानेगा। तो हमने देखा कि एक तरीका ये कि जो चीज छुप गई है, जो गुण दब गए हैं, जो प्राय नष्ट होने को हैं बीज, उन्हें फिर से जागृत किया जाए, उनकी चर्चा की
जाए, बच्चों के अंदर उसकी अवेयरनेस लाई जाए और साथ ही उन्हें ये रियलाइज कराया जाए कि कितना इम्पोर्टेंट।
दूसरी एक बहुत अच्छी चीज जो बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन मैं इसकी जानकारी देना चाहूंगा, ये हमारा परम कर्तव्य है, हमारे सबके अंदर देवत्व विद्यमान है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। कहीं एक छोटा बच्चा भी अगर झूठ बोलता है तो झूठ बोलने के बाद वो पाता है कि उसकी खुशी नष्ट हो गई, क्योंकि उसकी अंतर मन, उसकी इनर कॉन्शियसनेस उसको धिक्कार रही है कि गलत, यू आर रॉन्ग, झूठ क्यों बोला। तो कहीं ना कहीं प्योरिटी, देवत्व, ये सारे सद्गुण, ये मॉरल वैल्यूज हमारे अंदर हैं
जी।
तो हम इस चीज को पहचान लें, बहुत अच्छा एक चिंतन मैं दे रहा हूं सवेरे के लिए जो हमें करना है
जी।
हम सभी देवों की संतान हैं, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। तो जैसे हमने बात की थी शेर का बच्चा, शेर
जी
भगवान के बच्चे हम हैं, तो भगवान के बहुत सारे गुण, उसकी क्वालिटीज हमारे अंदर हैं
जी, जी।
अगर हम इस अवेयरनेस को रोज सवेरे सवेरे अपने को देंगे, याद दिलाएंगे, तुम तो भगवान के बच्चे हो, वो तो शांति का सागर है, तुम्हारे पास भी शांति है, वो तो परम सत्य है, तुम्हारे पास भी सत्य की शक्ति है, वो भगवान होते हुए संपूर्ण निरहंकारी है, तुम अहंकारी क्यों, तुम्हारा परम पिता प्यार का सागर है, तुम्हारे पास भी असीम प्यार समाया हुआ है
जी,
ये अवेयरनेस होते होते ये सब सद्गुण एक्टिव हो जाएंगे
जी,
जीवन में आने लगेंगे
जी। तो ये दूसरा तरीका आपने दूसरा बताया तरीका। बहुत सुंदर भ्राता जी कि हम उस परम सत्य की संतान है, तो हमारे अंदर भी सत्यता है, शांति है, शक्ति, और वो तमाम चीजें जो उसके पास है वही हमारे अंदर भी है। तो सुबह सुबह आपने विशेष एम्फेसाइज किया, पहले भी आपने सुबह ही कहा था, केवल सुबह ही या दिन में कभी भी इस चिंतन को अपने अंदर लाया जा सकता है।
शुरुआत तो हमें सुबह से ही करनी चाहिए
जी,
क्योंकि सुबह हमारा विवेक बिल्कुल शांत होता है, हमारी बुद्धि शांत होती है, तो वो नई चीज ग्रहण करने के लिए तैयार रहती है। और सारा दिन हमने उसमें बहुत कुछ भर लिया है तो उसमें स्पेस भी कम हो गया, और जो चीज हमने देखी, जो सुनी, जो व्यवहार में आई, उसका इफेक्ट भी कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन पर पड़ता रहता है। तो नई चीजों को कभी कभी हम बिल्कुल सटिल लेवल पर रिजेक्ट भी करते रहते हैं कि नहीं ये नहीं, बाहरी रूप से हमें पता नहीं चलता और अंदर ही अंदर हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी इनर कॉन्शियंस उसको रिजेक्ट कर देती है, नो ये नहीं, ये ठीक नहीं है।
तो दूसरी बात जो भ्राता जी आपने कही, सुबह हम विशेष करके इस प्रकार का चिंतन करें, और क्या तरीके?
और इसी तरह सुबह और भी चिंतन हमें करना है। देखिए हमारे भारत में तो हम अपने पूर्वजों के बारे में सुनते ही रहते हैं, हमारे यहाँ ग्रंथ भी हैं, धार्मिक ग्रंथ भी हैं, ऋषि मुनियों को हमारे पूर्वज माना जाता है, लेकिन हम उससे भी आगे चलें, उसे पीछे लौटें थोड़ा कि हमारे पूर्वज तो वास्तव में देवता थे, हम देवों की संतान भी हैं। भारत में तो 33 करोड़ देवी देवताओं की चर्चा है ही, तो वो कहाँ गए आज? वो सब एक्चुअली यही हैं, उनका जो लेवल है वो नीचे उतर आया है। तो अगर हम सवेरे उठ के ये भी याद करेंगे कि हम मंदिरों में जाके देवताओं के आगे हाथ तो जोड़ रहे हैं, नमन तो कर रहे हैं, अपना सम्मान और श्रद्धा तो उन पर अर्पित कर रहे हैं, लेकिन हम तो उनके वंशज हैं, वो और हम जुड़े हुए हैं, तो उनके भी वो देवत्व के गुण
हमारे अंदर,
वो हमारे अंदर हैं। इसको याद करने से वो फिर से एक्टिव होने लगेंगे, इमर्ज होने लगेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि एक सुंदर चिंतन अगर सवेरे उठकर हम कर ले, और बच्चों के पास अगर सवेरे समय न बचता हो, वो तैयार हो, जल्दी जल्दी करें, स्कूल जाना है, तो वो दिन में भी चिंतन कर सकते हैं, रात को सोने से पहले।
क्योंकि भ्राता जी ये चिंतन तो ऐसा है जो कहीं ना कहीं प्रभाव अवश्य डालेगा, क्योंकि विचारों में यदि श्रेष्ठता है, विचार यदि सुंदर है, तो निश्चित रूप से उसकी वाणी में भी और उसके कर्म में भी इसका प्रभाव दिखाई तो देगा ही देगा।
बिल्कुल, विचार जितने सुंदर होंगे जीवन उतना ही सुंदर होगा। इसलिए विद्यार्थियों को विशेष रूप से ये ट्रेनिंग दी जाए, ये टीचिंग दी जाए कि उनके ये विचार गलत हैं और उनके ये विचार होने चाहिए, दोनों की अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि बच्चे होने के कारण उन्हें ये पता भी नहीं चलता कि वो गलत सोच के आ रहे हैं, तो उसकी भी अवेयरनेस हो, तुम जो ये सोच रहे हो इसका परिणाम भविष्य पर आएगा
जी,
जैसा हम पहले से चर्चा कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं वो बात हम बार बार अपने श्रोताओं को, दर्शकों को कहें कि हमारा जो चिंतन है वो हमारे भविष्य पर सीधा प्रभाव डालता है। इसलिए ये रख लें कि जितना हम पॉजिटिव होंगे, जितने हमारे विचार मोस्ट एलिवेटेड होंगे,
उच्च भविष्य श्रेष्ठ,
भविष्य सुंदर होगा, हम एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, लाइफ स्ट्रगल नहीं होगा, जो लोग कह देते हैं लाइफ इज ए स्ट्रगल, स्ट्रगल नहीं, लाइफ विल बिकम एन एंजॉयमेंट।
बहुत सुंदर, एक सुंदर बात कही आपने भ्राता जी, कि कहीं ना कहीं हमारे मूल्यों के साथ हमारे विचार भी जुड़े हुए हैं, और इसकी चर्चा विद्यालयों में भी होनी चाहिए, परिवार में भी होनी चाहिए, ताकि इसकी अवेयरनेस बच्चों में आए, इसके मूल्य को वो समझें। और दूसरा जो आपने बहुत सुंदर अभ्यास बताया कि हम परम शक्ति की संतान है और साथ ही देवत्व हमारे अंदर रहा है और हम देवों के वंशज हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर गुण है, ये चिंतन उनके अंदर इन चीजों को विकसित करेगा और ये जो एक मूल्यहीनता दिखाई दे रही है वो दूर होती चली जाएगी।
गुणों से बच्चों की एकाग्रता भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है
जी,
क्योंकि जब जीवन में मूल्यों की कमी होती है तो मन बहुत भटकता है
जी,
और मन जब भटकता है तो बुद्धि की एकाग्रता नष्ट होने लगती है। अब वो बैठे तो होंगे क्लास में, टीचर उन्हें कुछ पढ़ा रहा होगा, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रही होगी शरारत इधर की उधर की, तो एकाग्रता पूरी तरह भंग होती नजर आएगी। टीचर को महसूस होगा कि ये यहाँ नहीं है, ये कहीं और कुछ सोच रहे हैं। इसलिए निर्मल प्रेम
जी,
एक दूसरे में सद्भावना, एक दूसरे की बात को सम्मान देना
जी,
और विशेष रूप से अच्छे बोल बोलना, लड़ाई झगड़ा से मुक्त रहना
जी,
अपनी बात पे अड़े न रहना, क्रोध और अहंकार से बचना, ये मूल्य हमेशा ही मनुष्य की विवेक शक्ति का विकास करेंगे, उसकी एकाग्रता को बढ़ाएंगे और तब उसकी मेमोरी पावर भी इतनी स्ट्रांग रहेगी
बहुत
कि उसे बहुत मेहनत नहीं करनी
पड़ेगी। आपने जोड़ी है भ्राता जी, जिसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं तक और दर्शकों तक हम पहुंचाना ही चाहेंगे कि मूल्यों का संबंध कहीं ना कहीं हमारी एकाग्रता के साथ भी है। ये सारे मूल्य तो अपने वो जीवन में लाए हैं जो उसके जीवन को मूल्यवान बनाएंगे, लेकिन ये सभी चीजें उसके जीवन की सफलता के लिए, उसकी एकाग्रता के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की चर्चा बहुत ही सुंदर रही भ्राता जी, और आपने बहुत सुंदर सुंदर बातों पर, सूक्ष्म बातों पर प्रकाश डाला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा विद्यार्थी वर्ग जिसका जीवन वास्तव में आगे आने वाले समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही मूल्यवान है, उसके जीवन में यदि मूल्य होंगे तो निश्चित रूप से देश का भविष्य भी बहुत 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 मूल्यवान होगा। और मूल्यों का कहीं ना कहीं संबंध हमारी एकाग्रता के साथ भी है, और जितनी एकाग्रता होगी, जितने जीवन में मूल्य होंगे, उतना ही हमारा जीवन सफल होगा। तो हम आगे अपनी चर्चा को इस पर जारी रखेंगे कि कैसे मूल्यों से हमारे जीवन में एकाग्रता आती है और कैसे एकाग्रता हमें सफलता की ओर ले चलती है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत अपने मित्र को, नमस्कार।